नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मेलानी जेसन्स की पुस्तक कैनवा फॉर बिगिनर्स एंड सोशल मीडिया फ्रॉम जीरो टू क्रिएटिव कंटेंट एक शुरुआती स्तर की व्यावहारिक डिजाइन गाइड है। इसका विषय कैनवा के माध्यम से सोशल मीडिया के लिए दृश्य सामग्री बनाना है, विशेषकर पोस्ट, कैरोसेल, स्टोरी, रील कवर, थंबनेल और टेम्पलेट आधारित डिजाइन। उपलब्ध विवरण के अनुसार पुस्तक कैनवा के वर्कस्पेस, टेक्स्ट, रंग, लेआउट, इमेज और ग्राफिक एलिमेंट्स जैसे मूल उपकरणों को सोशल मीडिया के वास्तविक उपयोग से जोड़ती है। इसका उद्देश्य केवल बटन और मेनू समझाना नहीं, बल्कि ऐसे डिजाइन निर्णयों की बुनियाद देना है जिनसे सामग्री पढ़ने योग्य, सुव्यवस्थित और दृश्य रूप से एक रूप बने। यह पुस्तक उन लोगों के लिए बनाई गई प्रतीत होती है जिनके पास औपचारिक ग्राफिक डिजाइन प्रशिक्षण नहीं है, लेकिन जिन्हें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब या अन्य चैनलों के लिए नियमित सामग्री बनानी है। इसकी उपयोगिता इस बात में है कि यह डिजाइन को जटिल पेशेवर शब्दावली के बजाय दोहराई जा सकने वाली प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, कैनवा वर्कस्पेस को रचनात्मक काम की व्यवस्थित आधारशिला बनाना पुस्तक का आरंभिक और महत्वपूर्ण पक्ष कैनवा के वर्कस्पेस को समझना है। शुरुआती उपयोगकर्ता अक्सर किसी टेम्पलेट पर सीधे काम शुरू कर देते हैं, पर उन्हें यह स्पष्ट नहीं होता कि एडिटर, साइड पैनल, फोल्डर, एसेट और टेम्पलेट सिस्टम उनके काम को कैसे व्यवस्थित करते हैं। यह पुस्तक इस व्यावहारिक अंतर को संबोधित करती है। वर्कस्पेस की समझ का अर्थ केवल किसी आइकन का कार्य जानना नहीं है, बल्कि सही आकार का डिजाइन चुनना, उपयुक्त सामग्री ढूंढना, अपनी फाइलों को पहचानने योग्य नामों और फोल्डरों में रखना तथा पुराने डिजाइन को दोबारा उपयोग योग्य बनाना है। सोशल मीडिया पर नियमित प्रकाशन करने वाले व्यक्ति के लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से जरूरी है, क्योंकि हर पोस्ट को शून्य से बनाना समय लेता है और ब्रांड की दृश्य पहचान को असंगत कर सकता है। टेम्पलेट सिस्टम का विवेकपूर्ण उपयोग इस समस्या का व्यावहारिक समाधान बनता है। पुस्तक की घोषित शुरुआती प्रकृति के अनुरूप यह दृष्टिकोण कैनवा को केवल चित्र संपादन का साधन नहीं, बल्कि कंटेंट उत्पादन का कार्यक्षेत्र मानता है। इससे पाठक डिजाइन बनाते समय खोज, संपादन, संग्रह और पुनर्प्रयोग के बीच का संबंध समझ सकता है। हालांकि टेम्पलेट को अंतिम उत्तर मानने के बजाय उसे अपनी सामग्री, रंग और संदेश के अनुरूप ढालना आवश्यक रहता है। दूसरा, टाइपोग्राफी से स्पष्ट संदेश और पढ़ने योग्य सोशल पोस्ट बनाना। सोशल मीडिया डिजाइन में टेक्स्ट अक्सर मुख्य संदेश का वाहक होता है, इसलिए पुस्तक में टाइपोग्राफी की बुनियादी भूमिका महत्वपूर्ण है। उपलब्ध विवरण में टेक्स्ट हायरार्की, पठनीयता के सिद्धांत और आम फॉन्ट पेयरिंग का उल्लेख है। इन विचारों का व्यावहारिक अर्थ यह है कि दर्शक को एक नजर में पता चले कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सहायक जानकारी क्या है और अगला कदम क्या हो सकता है। हेडलाइन, उपशीर्षक और छोटे विवरण को एक जैसा आकार या वजन देने पर संदेश बिखर जाता है। इसके विपरीत आकार, बोल्डनेस, खाली जगह और टेक्स्ट की स्थिति से प्राथमिकता स्पष्ट की जा सकती है। फॉन्ट चुनते समय सजावटीपन से अधिक उपयोगिता मायने रखती है। बहुत अधिक फॉन्ट या अत्यधिक स्टाइल एक ही पोस्ट में दृश्य अव्यवस्था पैदा कर सकते हैं, जबकि सीमित और पूरक फॉन्ट संयोजन निरंतरता देते हैं। मोबाइल स्क्रीन के संदर्भ में यह और भी जरूरी है, क्योंकि दर्शक सामग्री को तेजी से स्क्रॉल करते हुए देखते हैं। पुस्तक का शुरुआती दृष्टिकोण पाठक को पेशेवर टाइपोग्राफर बनने का दावा नहीं कराता, बल्कि ऐसे सरल नियमों पर केंद्रित करता है जिनसे पोस्ट का संदेश दबने के बजाय उभर सके। इस प्रकार टाइपोग्राफी को सजावट नहीं, सूचना के क्रम और संचार की संरचना के रूप में समझाया जाता है। तीसरा, रंग, ग्रिड और स्पेसिंग से दृश्य एकरूपता स्थापित करना। पुस्तक रंग और लेआउट को अलग अलग सजावटी विकल्पों की तरह नहीं, बल्कि सामग्री की स्पष्टता से जुड़े निर्णयों की तरह रखती है। उपलब्ध विवरण के अनुसार इसमें सरल रंग पैलेट, रंग का उद्देश्यपूर्ण उपयोग, ग्रिड अलाइनमेंट, स्पेसिंग, ग्रुपिंग और लेयरिंग शामिल है। रंग पैलेट सीमित रखने का लाभ यह है कि पोस्ट पहचानने योग्य बनता है और महत्वपूर्ण टेक्स्ट या बटन जैसे तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। अनियोजित रंग चयन संदेश की प्राथमिकता को कमजोर कर सकता है, विशेषकर जब बैकग्राउंड और टेक्स्ट के बीच पर्याप्त अंतर ना हो। इसी तरह लेआउट का काम हर चीज को भर देना नहीं, बल्कि तत्वों के बीच संबंध स्पष्ट करना है। ग्रिड और अलाइनमेंट यह संकेत देते हैं कि कौन से हिस्से साथ पढ़े जाने चाहिए। स्पेसिंग दर्शक को रुकने की जगह देती है और भीड़भाड़ कम करती है। ग्रुपिंग से संबंधित टेक्स्ट, आइकन और चित्र एक इकाई की तरह दिखाई देते हैं, जबकि लेयरिंग से आगे और पीछे के तत्वों की दृश्य गहराई नियंत्रित होती है। सोशल पोस्ट, कैरोसेल और स्टोरी में इन सिद्धांतों का लाभ अलग अलग रूपों में मिलता है, पर मूल उद्देश्य वही रहता है। तेज देखने के दौरान भी समझ में आने वाली रचना, यह भाग खास तौर पर उपयोगी है क्योंकि यह डिजाइन को व्यक्तिगत पसंद से आगे ले जाकर पुनरावृत्त जांचने योग्य दृश्य नियमों पर टिकाता है। चौथा, इमेज क्रॉपिंग और ग्राफिक एलिमेंट्स को संदेश के साथ जोड़ना। कैनवा में उपलब्ध इमेज शेप आइकन और अन्य एलिमेंट्स की बड़ी संख्या शुरुआती व्यक्ति को सुविधा भी देती है और चयन की समस्या भी। पुस्तक के विवरण में इमेज अपलोड करना क्रॉपिंग, ट्रांसपेरेंसी समायोजित करना और आइकन शेप तथा सहायक ग्राफिक्स को शामिल करना प्रमुख कौशलों के रूप में सामने आते हैं। इन उपकरणों का महत्व तभी बनता है जब वे संदेश को समर्थन दें। उदाहरण के लिए, क्रॉपिंग केवल फोटो को फ्रेम में फिट करने का काम नहीं करती, वह यह भी तय करती है कि दर्शक की नजर पहले किस विषय, चेहरे, उत्पाद या टेक्स्ट पर जाए। ट्रांसपेरेंसी किसी चित्र को बैकग्राउंड की तरह हल्का करने में मदद कर सकती है ताकि उसके ऊपर का टेक्स्ट पढ़ने योग्य रहे। आइकन और शेप सूचना को छोटे दृश्य संकेतों में बदल सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक एलिमेंट संदेश का ध्यान भटका सकते हैं, इसलिए चयन, आकार, स्थिति और दृश्य संतुलन महत्वपूर्ण है। उपयोगकर्ता की अपनी फोटो या ब्रांड सामग्री अपलोड करने की क्षमता भी जरूरी है क्योंकि इससे डिजाइन व्यक्तिगत और संदर्भानुकूल बनता है। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत यह है कि दृश्य सामग्री को भराव की तरह नहीं जोड़ना चाहिए। हर इमेज और एलिमेंट को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह पोस्ट के अर्थ, क्रम या पहचान में कौन सा योगदान दे रहा है। यही अंतर साधारण सजावट और उद्देश्यपूर्ण डिजाइन के बीच है। अंत में, इंस्टाग्राम रील और थंबनेल के लिए फॉर्मेट आधारित कंटेंट डिजाइन। इस पुस्तक की विशिष्टता कैनवा के सामान्य परिचय को सोशल मीडिया के अलग अलग कंटेंट फॉर्मेट से जोड़ने में है। विवरण में इंस्टाग्राम पोस्ट, कैरोसेल, स्टोरी, रीकवर, टेक्स्ट ब्लॉक और सामान्य लेआउट पैटर्न का उल्लेख मिलता है, जबकि शीर्षक टिकटॉक और यूट्यूब जैसे माध्यमों के लिए टेम्पलेट का भी संकेत देता है। इन फॉर्मेटों को एक ही डिजाइन की नकल मानना पर्याप्त नहीं है, एकल पोस्ट में संदेश तुरंत समझ में आना चाहिए। कैरोसेल में स्लाइडों के बीच क्रम और निरंतरता चाहिए, स्टोरी में सीमित स्थान के कारण संक्षिप्तता चाहिए, और रीकवर या थंबनेल को छोटे आकार में विषय का संकेत देना होता है। इसलिए कैनवास आकार, टेक्स्ट की मात्रा, कवर की संरचना और दृश्य पहचान प्लेटफॉर्म के प्रयोग के अनुसार बदलती है। पुस्तक इस प्रकार शुरुआती पाठक को यह समझने में मदद करती है कि डिजाइन निर्णय प्रकाशन के संदर्भ से अलग नहीं होते। एक उपयोगी कार्यप्रवाह यह हो सकता है कि पहले संदेश और फॉर्मेट निर्धारित किया जाए, फिर उपयुक्त टेम्पलेट चुना जाए, फिर रंग, फॉन्ट और इमेज को अपने खाते की पहचान के अनुसार बदला जाए। इस दृष्टि से पुस्तक केवल सुंदर ग्राफिक्स बनाने पर नहीं रुकती, बल्कि सामग्री को उस रूप में तैयार करने पर ध्यान देती है जिसमें दर्शक उसे वास्तव में देखेंगे और समझेंगे। निष्कर्ष में, कैनवा फॉर बिगिनर्स एंड सोशल मीडिया उन नए कंटेंट क्रिएटर्स, छोटे व्यवसाय संचालकों, फ्रीलांसरों, विद्यार्थियों और व्यक्तिगत ब्रांड बनाने वाले लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्हें बिना औपचारिक डिजाइन शिक्षा के नियमित सोशल मीडिया विजुअल तैयार करने हैं। इसकी व्यावहारिक उपयोगिता कैनवा के साधनों को डिजाइन के मूल सिद्धांतों के साथ रखने में है। पाठक केवल टेम्पलेट चुनना नहीं सीखता, बल्कि टेक्स्ट की प्राथमिकता, रंगों की संगति, लेआउट की स्पष्टता, इमेज के उद्देश्यपूर्ण उपयोग और अलग फॉर्मेटों की जरूरतों पर विचार करना सीख सकता है। यह संयोजन उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जल्दी में सामग्री बनाते हैं लेकिन हर पोस्ट को एक जैसा या अव्यवस्थित नहीं दिखाना चाहते। समान श्रेणी की कई गाइड केवल कैनवा के फीचर या अत्यधिक तैयार डिजाइन उदाहरणों पर केंद्रित रहती है, उपलब्ध विवरण के आधार पर। इस पुस्तक का अंतर यह है कि यह वर्कस्पेस और टेम्पलेट संगठन जैसी बुनियादी प्रक्रियाओं को इंस्टाग्राम पोस्ट, कैरोसेल, स्टोरी और रील कवर जैसे ठोस आउटपुट से जोड़ती है। फिर भी इसे उन्नत ब्रांड रणनीति, गहरी मार्केटिंग विश्लेषण या पेशेवर ग्राफिक डिजाइन का विकल्प नहीं समझना चाहिए। इसका वास्तविक मूल्य एक स्पष्ट प्रारंभिक ढांचा देने में है जो पाठक सीखे गए सिद्धांतों को अपने विषय, दर्शक और प्रकाशन लय के अनुसार दोहराएगा, वह अधिक सुसंगत और समझने योग्य दृश्य सामग्री बना सकेगा। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मेलनी जेसन्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।